ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में युग्म सम्मेलन में भाग लेंगे। युग्म का संस्कृत में अर्थ संगम है। ये अपनी तरह का पहला रणनीतिक सम्मेलन है जिसमें सरकार, शिक्षा जगत, उद्योग और नवोन्मेषक जगत के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये वाधवानी फाउंडेशन और सरकारी संस्थानों के संयुक्त निवेश से लगभग 1400 करोड़ रूपये की सहयोगी परियोजना द्वारा संचालित देश की नवोन्मेष यात्रा में योगदान देगा। एक रिपोर्ट।
इस सम्मेलन का उद्देश्य देश के नवाचार तंत्र में बड़े पैमाने पर निजी निवेश को बढ़ावा देना, शिक्षा, उद्योग, सरकार के बीच साझेदारी को मजबूत करना और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नवाचार को गति प्रदान करना है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर और नवाचार आधारित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप सम्मेलन के दौरान विभिन्न प्रमुख परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी। भूपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
भारत फ्रांस से 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकार्नो ने कल नई दिल्ली में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। 26 राफेल विमानों में से 22 एक सीट वाले और 4 दो सीट वाले होंगे। इन्हें भारतीय नौसेना की आवश्यकता के अनुसार डिजाइन और तैयार किया जाएगा। इन विमानों की आपूर्ति वर्ष 2030 तक हो जाएगी। इस समझौते के तहत प्रशिक्षण, सिमुलेटर, उपकरण और हथियार उपलब्ध कराए जाएंगे। राफेल विमानों के नौसेना बेड़े में शामिल होने से नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इन लड़ाकू विमानों को INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे विमान वाहक पोतों में तैनात किया जाएगा। राफेल उन्नत हथियार प्रणालियों और मिसाइलों से लैस होगा। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते FTA पर बातचीत के सिलसिले में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स से मुलाकात की। श्री गोयल निवेश और द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करने के उद्देश्य से 2 दिन के दौरे पर लंदन गए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत तथा ब्रिटेन के बीच FTA पर बातचीत फिर से शुरू हुई है और दोनों पक्ष समझौते के लिए प्रतिबद्ध हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से देशभर के सभी 731 कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ संवाद किया। श्री चौहान ने इस बात पर बल दिया कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए अभियान के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कृषि व्यापक क्षेत्र है और प्रत्यक्ष रूप से लगभग 45% जनसंख्या कृषि से जुड़ी हुई है। कृषि मंत्री ने कहा कि देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP का लगभग 18% हिस्सा कृषि क्षेत्र से ही आता है, इसलिए इस व्यापक भूमिका को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए हमें लगातार प्रभावशाली प्रयास करने होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आंध्र प्रदेश से राज्यसभा के उपचुनाव के लिए श्री पाका वेंकट सत्यनारायण को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने कल उनकी उम्मीदवारी का फैसला किया। YSRCP के पूर्व नेता वी विजयसाई रेड्डी के राज्यसभा के सदस्यता से त्याग पत्र के कारण ये उपचुनाव कराया जा रहा है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आज नई दिल्ली स्थित अटल अक्षय ऊर्जा भवन में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME के लिए अवसरों का पता लगाने के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन करेगा। ये कार्यशाला स्थायी हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था को आकार देने में MSME की महत्वपूर्ण भूमिका का पता लगाएगी। स्पेन और पुर्तगाल में बिजली आपूर्ति धीरे धीरे बहाल हो रही है। बिजली आपूर्ति बाधित हो जाने से इन दोनों देशों में जनजीवन ठप्प सा हो गया था। इसके कारण विमानों और सार्वजनिक परिवहन की आवाजाही थम गई थी और अस्पतालों की सेवाएं बाधित हुई थीं। वेटिकन ने घोषणा की है कि दिवंगत पोप फ्रांसिस के उत्तराधिकारी का चुनाव करने के लिए गुप्त सम्मेलन 7 मई से शुरू होगा। ये निर्णय कार्डिनल के समूह की बैठक में लिया गया। ये समूह ही 21 अप्रैल को पोप फ्रांसिस के निधन के बाद प्रबंधन का कार्य देख रहा है। IPL क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी के ऐतिहासिक शतक और यशस्वी जायसवाल की नाबाद 70 रन की पारी के बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटन्स को 8 विकेट से हरा दिया है। महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला में आज कोलंबो में भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। ये मैच आर प्रेमदासा स्टेडियम में सुबह 10 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।